Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
उनके भगवान को स्वयं वेदों का मंत्रों का अर्थ बताने के लिए भगवान को स्वयं अवतार लेना पड़ा तो उनके भगवान भाष्यकार के भगवान शंकराचार्य के अनुग्रह से हम लोग समझ रहे हैं तो और इसलिए इतना समझ पा रहे हैं इतना बोल पा रहे हैं और उसके बाद इस युग में हमारे श्री महाराज जी ने जैसी व्याख्या की है वो अद्भुत है तो उसके कारण और यहाँ समझ को बुद्धि को दृष्टि को महत्व दिया जाता है इस देश में कहीं भी सिद्धि चमत्कार और बुद्धि को ठप करने की प्रणाली नहीं है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए उसमें जाकर नहीं फंसना चाहिए तो कहा कि ये दृष्टि यह इसमें अनुस्यूत रहती है जैसे वस्त्र में धागा अनुस्यूत रहता है तो आप कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं ज्ञानेन्द्रियों से आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध अर्थात सृष्टि का ज्ञान अर्जन करते हैं तो ये जो कर्मेंद्रियों के द्वारा और ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा आप कर्म करते हैं इसके भीतर कौन है तो कहा सूर्य देवता है तो यहाँ सूर्य का अर्थ हो जाता है हिरण्य गर्भ पहले तो उदयास्त बता दिया ये आपकी कथा है भला आप जब तक अपने को अभिभूत मानते हैं देह मानते हैं उदयस्त होता है लेकिन आप अपने में नहीं समझ पा रहे हैं तो भगवान सूर्य को सामने रखकर समझाया जा रहा है आपकी बात समझाई रहे तो पहले सूर्य का उदयस्त बता दिया और कहा आप सब देवता उनमें अर्पित हैं तब वो क्या हो जाएंगे हिरण्य गर्भ तो परब्रह्म परमात्मा जो है वही ईश्वर है और वह ईश्वर वो परब्रह्म परमात्मा कल सुनाया था आपको वो निसंकल्प है माया रूपी संकल्प उनमें नहीं है लेकिन जब संकल्प का उदय हुआ तो ईश्वर उपाधि हो गई अर्थात माया उपाधि से युक्त हो गए तो माया उपाधि आ गई तो ईश्वर हो गए और वह ईश्वर ही हिरण्यगर्भ हो गए और वो हिरण्यगर्भ ही सूर्य हो गए क्योंकि आप कहेंगे कि अभी ऐसे कहते हो अभी ऐसे कहते हो तो चैतन्य दृष्टि से इस प्रकार निरूपण किया जाता है तो वह जो विशुद्ध चैतन्य है पर ब्रह्म परमात्मा वही सूर्य भगवान के सूर्य के रूप में आपको दिख रहा है और इसलिए कहा सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च और जब आप सूर्य को देखते हैं तो ईशावास्य उपनिषद में भी कहते हैं यो असावसौ पुरुष सोहम अस्मी एकत्व जो यह पुरुष है वही मैं हूँ हिरणमयेन पात्रेन सत्यस्यापिहितं जगत मुखम तो वो वहां जो मंत्रों में कहा जा रहा है तो कहा वही मैं हूँ तो एकत्व बता दिया गया और वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के रूप में जगतः अनंत कोटि 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 ब्रह्मांडों के रूप में भी वही प्रकट हो रहा है वह परब्रह्म परमात्मा ही प्रकट हो रहा है सब उसी में अर्पित हैं सब उसी से प्रकट होते हैं और उसी में जाकर अर्पित हो जाते हैं और ब्रह्मातिरिक्त सृष्टि नहीं है तदु नात्येति कश्चन इस पर हम लोग कल थोड़ा विचार कर चुके हैं का उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता एतद् वही तद् उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता और सब देवता तो भगवान भाष्यकार कहते हैं कि उसमें अग्नि आदयो अधिदैवम वाग आदयश्च अध्यात्मम सर्वे सब के सब अधिभूत अधिदैव अध्यात्म सब देवता उसमें अर्पित हैं अराइव रत्नाभो अर्पिताः ये इनका भगवान भाष्यकार का बहुत दृष्टांत है जैसे रथ में नाभि में अरा अर्पित होते हैं अरे उसी प्रकार से सब इसमें अर्पित होते हैं यही यह तदेतत् सर्वात्मकम् ब्रह्म वही यह सर्वात्मक ब्रह्म है तो ये सब इसी में देवता सब इसमें अर्पित है अब इसमें से एक बात और निकल के आती है यदि आप उस परब्रह्म परमात्मा को जान लेते हैं अपनी आत्मा के रूप में, तो आपको और पृथक पृथक देवताओं को जानने की आवश्यकता नहीं रहती। ये दूसरी बात है कि पहले जब प्रक्रिया से हम चलते हैं तो पहले उपासना भी जीवन में आती है। तो अब जो उपासना थी प्रायः सबने कर ली है, अब हम लोग वेदांत विचार की भूमिका में खड़े हैं, अर्थात ज्ञान के विचार की भूमिका में खड़े हैं। तो कहा कि ये हिरण्यगर्भ इसमें सब अर्पित हैं, तो ईश्वर में संकल्प का उदय हुआ, ब्रह्म में संकल्प का उदय हुआ ईश्वर, और उसमें से फिर ये हिरण्यगर्भ। अब ये हिरण्यगर्भ जो है इससे जब आप एक हो जाते हैं तो कहते हैं ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई, अधिदेव की दृष्टि से। तो कहा ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई। अब ये जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति और कहा वहां जाकर मुक्त होते हैं, एक बात, लेकिन ये ब्रह्मलोक की प्राप्ति इसमें तत्व ज्ञान तो वह ब्रह्म ही है, लेकिन यदि उसके साथ सुख की वासना ब्रह्मलोक या हिरण्यगर्भ से एक है, कौन एक है, जीव आप, तो आप जो जीवत्व की उपाधि पहले धारण किए थे वो जब आप हिरण्यगर्भ से एक हुए तो आप निसंकल्प होते चले जाएंगे, लेकिन यदि आप में एक होते हुए भी सुख की वासना है तो सुख की वासना है तो वह हिरण्यगर्भ का लोक जो है वही वैकुंठ बन जाएगा, किसी के लिए कैलाश बन जाएगा, किसी के लिए साकेत बन जाएगा, किसी के लिए गोलोक बन जाएगा, जैसी जिसकी वासना होगी किसी के लिए स्वर्ग बन जाएगा, वासना होगी उसके अनुसार स्वराज्य भौज्य साम्राज्य ये सब क्या बनेगा। कहा हिरण्य गर्भ ही बनता है, बहुत सुख में बहुत आनंद में हम वहां ऐसे रहेंगे। तो आप सुख के भोक्ता बनना चाहते हैं, आप सत्य स्वरूप को नहीं जानना चाहते, ये मुश्किल है, हमेशा हम सुख के भोक्ता बनना चाहते हैं। और त्रिपुटी बनी रहेगी जब तक भोक्ता भोग्य और भोग भाव बना रहेगा, त्रिपुटी बनी रहेगी। तो इस कारण से ये हिरण्यगर्भ ये इसको भी हम बनाते हैं, और वो हिरण्यगर्भ ही अनेक रूपों में हो जाता है जीव की अपनी वासना के अनुसार, वो वैसा बन जाता है। तो इसलिए कहा कि वो आप जीव में, जीव जब एक होता है हिरण्यगर्भ से और उसमें जब संकल्प का उदय हो जाता है, संकल्प उसका बना हुआ है, तो परिच्छिन्न लोक, परिच्छिन्न देवता, परिच्छिन्न सुख वो सब बना लेगा, स्वर्ग आदि का सुख, साकेत आदि का सुख, वैकुंठ आदि का सुख, ये सब वो बना लेता है। इसलिए अनेक प्रकार की मुक्तियां बता दी गई। जो अनेक प्रकार की मुक्तियां हैं वो उत्पन्न की हुई हैं, बनाई हुई हैं, और वो बनाई हुई हैं इसलिए वो लोक लोकांतर के गमन की बात उसमें आ जाती है, सालों के सामी पिसारूप इत्यादि आ जाती है, वो अभी यहाँ विषय नहीं है। तो हिरण्यगर्भ में जब एकत्व की स्थिति होती है, हिरण्यगर्भ में जब आप जाते हैं तो वहां एकत्व जो होता है तो उसकी एक स्थिति होती है, और उसमें यदि निर्वासन है, यदि तत्व ज्ञान है साथ में, तो ब्रह्म के तब उसको जब एकत्व की स्थिति होती है तो हिरण्यगर्भ है, और लेकिन जब एकत्व का ज्ञान होता है तो ब्रह्म है, तब ईश्वरता नहीं। तो ब्रह्म के एकत्व का ज्ञान होता है और हिरण्यगर्भ के एकत्व की स्थिति होती है, अंतर होता है, जैसे हम लोग समाधि में और तत्व ज्ञान में अंतर करते हैं, कुछ परिच्छिन्नता तो बनी रहेगी ना अपनी, तो एकत्व की स्थिति होती है। इसलिए हिरण्यगर्भ लोक से आप बाहर भी आएंगे, जन्म भी ले सकते हैं, जिसको ब्रह्मलोक कहते हैं, तो आपका जन्म होगा, फिर आप जाएंगे, फिर आएंगे, ये होगा। तो किंतु तदुनातीति कश्चन के द्वारा कह रहे हैं कि आप आत्मदेव का निषेध नहीं कर सकते, भले आप लोक की कल्पना करें, देवता की कल्पना करें, लेकिन अपने आत्मा का आप निषेध नहीं कर सकते। ये तदु नात्येति कश्चन। तो मूल जो अधिष्ठान है का दिशाएं आकाश में है, अंतरिक्ष में है, मान लो आप ऐसे मानते हैं, और उसका अधिष्ठान कौन है? तो चैतन्य ब्रह्म। तो जो मूल अधिष्ठान है जिसमें दिशाओं की उपाधि है, एक उपाधि आ गई, और दिशाओं की उपाधि के कारण उस तत्व में पूर्णता भासती है, भरपूरता जिसे आप कहते हैं, तो पूर्णता भासती है क्योंकि बुद्धि में वो सब बैठा हुआ है, और जिसमें काल की उपाधि से नित्यता भासती है, और काल की दृष्टि से और वस्तुओं की दृष्टि से, द्रव्य की दृष्टि से, इस दृष्टि से अर्थात उपाधि से, आप निरुपाधिक ब्रह्म लेकिन उपाधि से ये दृश्य प्रपंच भासता है। तो जो भासता है उसे नहीं देखो, और जिस उपाधि से भासता है उसे भी मैं नहीं देखो, किंतु जो आप हैं, जिसे भासता है उसे देखो। तदु नात्येति कश्चन, उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, वह ज्ञानात्मक ब्रह्म है, उसका जिसको भासता है उसका कोई अतिक्रमण उसका नहीं कर सकता है, वह ज्ञानात्मक। तदु नात्येति कश्चन, नात्येति न अतीत्य, भाष्यकार भगवान कहते हैं तदात्मकताम तद अन्यत्वम गच्छति कश्चन, कश्चिदपि, कोई भी, कोई कहे कि नहीं हम बहुत वीर हैं, हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे, तो मूर्ख ही होगा हमारा, कहेगा कल सुनाया तो था आपको कि मैं अपने आप का निषेध करेगा, कहेगा ब्रह्म नहीं है, तो अपने आप का स्वयं का निषेध कर दे। तो ज्ञानात्मक ब्रह्म है, इंद्रियां, आपकी इंद्रियां और आपके सारी इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय सब ले लेना, और मनोवृत्तियां सब उसी में अर्पित है सबका, और अर्थात इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का, सबका अपना आत्मा है, अपना आपा है, इसलिए वो निषेध नहीं कर सकते। इंद्रियां भी उसका निषेध नहीं कर सकती, मन भी निषेध नहीं कर सकता, बुद्धि भी निषेध नहीं कर सकती, क्योंकि वो सबका सबकी आत्मा है, सबसे परे सबको चेतनता दे रहा है और सबकी आत्मा है। निषेध असंभव है, अतिक्रमण नहीं हो सकता, न अत्येति कश्चन, अतिक्रमण नहीं हो सकता। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, दिक्कालादि से जो अनवच्छिन्न है वह परमात्मा, उसमें लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसमें उम्र नहीं है, उसमें दृश्यता नहीं है, और हमेशा हम अपने को लंबा चौड़ा मानते हैं, उम्र मानते हैं, दृश्य मानते हैं, तो ऐसा जो आपका आत्मा है वह अद्वितीय ब्रह्म है, एतद् वै तद्, वह परिपूर्ण है, अविनाशी है, चैतन्य घन है, एक रस है, ऐसा जो ब्रह्म है उसका उल्लंघन नहीं होता है। बृहदारण्यक उपनिषद में आप देखेंगे गार्गी ने पूछा, सब जिसमें ओतप्रोत है, इसमें भी ओतप्रोत की अर्पिता से उसी ओतप्रोतता की बात आ रही है, तो कहा सब जिसमें ओतप्रोत है वो कहा अक्षर ब्रह्म। तो क्रम से पूछती गई गार्गी, अब उन्होंने पूछा कि वह अक्षर ब्रह्म किसमें ओतप्रोत है, याज्ञवल्क ने कहा अति प्रश्न मत कर गार्गी, वो अति प्रश्न है, उसका ये इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी इस प्रकार से बात नहीं करते, तुम ब्रह्मवादिनी, आत्मा में ओतप्रोत है वैसे देखा जाए तो। कहा कि कोई कोई बोलते हैं 50 करोड़ योजन के जाएंगे आप तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। अब महाराज ये बोला गया कि पृथ्वी तो घूम जाती है, तो महाराज जी ने दृष्टांत दिया है, तो 50 करोड़ जो योजन है उसका गणित कैसे लगेगा, यही बात बताने के लिए आगे का मंत्र आएगा। आगे का मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्यु स मृत्यु आपनोति यही है नानेव पश्यति, सब उसी के लिए तैयारी की जा रही है। तो कहा कि आत्मा में और ब्रह्म में के बीच में एक झीना सा भी पतला सा भी पर्दा नहीं है, कहीं कोई पर्दे की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य और चैतन्य की विभाजक रेखा कोई होती ही नहीं है। वह इतना सूक्ष्म है कि उसमें कोई विभाजक रेखा बन ही नहीं सकती, उसकी कोई विभाजक रेखा नहीं है, तो उसमें इसका अतिक्रमण नहीं होता है। तो कैसे नहीं पहचानते, तो कहा कि अज्ञान के कारण, नहीं पहचानने के कारण, बेवकूफी के कारण, अर्थात हम विचार नहीं करना चाहते, उस सत्य का विचार ही नहीं करना चाहते, यही बीच में बाधा है, हम उस सत्य का विचार नहीं करना चाहते। कहीं हमारे कर्म प्रबल हो जाते हैं, संस्कार प्रबल हो जाते हैं, वासना प्रबल हो जाती है, देह प्रबल हो जाता है, बहुत कुछ आ जाता है, गुण आ जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये आ जाते हैं, टाल देते हैं, ज्ञान को ही टाल देते हैं, विचार को ही टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेवकूफी को सम्मान देते हैं, हम अज्ञान को सम्मान देते हैं, हम नासमझी को अपना जीवन बना के रखते हैं। क्यों? ये नासमझी को भी इसलिए पाला गया है क्योंकि वासना है, वासना और नासमझी का साथ है हमारा, वो तत्व ज्ञान वासना क्षय और मनोनाश, प्रायेण स युज्यन्ते व्युज्यते क्वचित क्वचित, विद्यारण्य स्वामी कहते हैं कि हमेशा साथ ही रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तत्व ज्ञान हो गया गुरुदेव के आशीर्वाद से, कृपा से, और कुछ वासना अभी बनी हुई है या मनोनिग्रह नहीं हुआ, तो उसके लिए उस तत्वज्ञ को प्रयत्न कर लेना चाहिए। तो ये साथ में रहते हैं, तो हम नासमझी को क्यों सम्मान देते हैं? क्योंकि हम अपनी वासना को, कुछ ना कुछ छोटी छोटी वासना को हम बना के रखना चाहते हैं। किसी को बेटा खिलाना है, किसी को नाती खिलाना है ना, किसी को चुनाव लड़ना है, किसी को आंदोलन करना है, बहुत कुछ करना है, तो करने की बात है। तो ब्रह्म तो इसी देश में, काल में, वस्तु में, द्रव्य में है, अर्थात यही है, अभी है, यही है, लेकिन हम उसको दूर कर देते हैं। तो श्रुति भगवती की यह इच्छा रहती है, अथवा कहो श्रुति माता का यह आदेश रहता है। अब तो माता पिता की आज्ञा मानते नहीं बच्चे, इसलिए वो कथा चली गई, पुराने जमाने की हो गई। तो श्रुति माता का यह आदेश है कि मेरे पुत्रों तुम छोटे छोटे मत बनो, छोटा छोटा मत बनो, ये उनकी, उन्होंने एक बात कही। जहां से ज्ञान सूर्य का उदय होता है और जहां अस्त होता है, ज्ञान सूर्य का अस्त होता है, तो क्या है, वृत्ति ज्ञान का ही उदय और अस्त होता है, ज्ञान सूर्य अर्थात वृत्ति ज्ञान। और ये वृत्ति ज्ञान का उदय हुआ, उसका भाव बना, संसार रूप दृश्य प्रपंच रूप भाव बना, अथवा इसका अस्त हुआ, इसका अभाव रूप एक आपको ज्ञान हुआ, तो ये भावाभाव का एक रस साक्षी कौन है? भाव आता है, अभाव आता है, दृश्य प्रपंच आता है, इसका भाव होता है। सुषुप्ति में आप सो जाते हैं तो कहते हैं कि अस्त हो गया, हमारी बुद्धि का सूर्य, दृष्टि का सूर्य सुषुप्ति में गहरी नींद में कहा अस्त हो गया, लेकिन इस सब इसको देखने वाला कौन है? वह स्वरूप भूत ज्ञान है, और वही ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है। स्वरूप भूत आपका मूल स्वरूप है, वही परमार्थ सत्य है, और वही परमार्थ सत्य है। और सूर्य जो नेत्र के अधिदेवता है, यतश्चो देति, वो क्या दिखाते हैं? प्रकाशक ज्ञान को दिखाते हैं, जो प्रकाशक ज्ञान है उसका उपलक्षण है। और वह जो प्रकाशक ज्ञान है वह सर्वावभाषक है, सबको अवभाषित करता है, और सर्व में रहता, सर्व में संबलित रहता है, सर्व को के साथ वह जुड़ा, ओतप्रोत है, अर्पिताह का अर्थ है कि सर्व में संबलित रहता है, सबके साथ वह रहता है। और इसी का, ये सर्व का उदय और अस्त होता रहता है, और विषय और रूप से रहित जो ज्ञान मात्र है उसका उदय और अस्त नहीं होता है। उपाधि का उदय और अस्त होता है। आज श्री महाराज जी बोल रहे थे कि तुम जब पैसा तुमने कमाया और कहा कि ये मेरा है, और फिर जब वो पैसा जाएगा तब तुम दुखी होते हो। दुखी उस समय होना चाहिए था जब तुमने मेरा कहा था। तो भगवान की वस्तु को मेरा कहने वाले तुम कौन, अभी बोल रहे थे श्री महाराज, तो तुम कौन हो? तो जब भगवान की जो वस्तु है उसको तुम मेरा कहते हो तो भगवान चांटा मार के और छुड़ा लेते हैं तब रोते हो। तो जो तुम्हारा नहीं है उसको तुम्हारे तो केवल परमात्मा है, उनसे तुम एक हो जाओगे तो उनकी सारी संपत्ति तुम्हारी है। और वो श्रोत्रियस्य च अकामहतस्य, वो श्रोत्रिय अकामहत वो सबको सबके भोग को भोग सकता है। तो यह जो सर्वावभासक ज्ञान है इसमें जाकर बैठो, और जीव जगत ईश्वर, जीव जगत और ईश्वर इसके पीछे वह परमात्मा है। कोई बोलते हैं, हम लोग विचार करते हैं तो जीव का करते हैं, जगत का करते हैं, ईश्वर का करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो विचार है वो जीव जगत और ईश्वर तीनों के पीछे जो तत्व है उसका विचार है, उसका यहाँ विचार है। तो ये जो जीव जगत और ईश्वर की जो कल्पना है वह स्वयं प्रकाश अधिष्ठान चैतन्य में है। जो आपका अपना चैतन्य है उसी में वह अद्वितीय है, अविनाशी है, एक रस है, स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश है अर्थात उसको जानने के लिए मन इंद्रिय आदि की आवश्यकता नहीं, आप उसको ऐसे ही जान सकते हैं। वो प्रत्येक चैतन्य से अभिन्न है, परब्रह्म परमात्मा है। इसमें भाष्यकार भगवान एक मंत्र को दूसरे मंत्र से जोड़ते हुए कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यद ब्रह्मादि स्थावरान्तेषु वर्तमानम तत्तद् उपाधित्वाद् अब्रह्मवद् अवभासमानम्। संसारी अन्यत् परस्माद् ब्रह्मण इति मा भूत कस्यचित् आशंका इति इदम् आह। तो कहा कि ये किसी को ऐसी आशंका नहीं हो जाए कि कहा कि जो ब्रह्मा से लेकर और स्थावर पर्यंत, तिन के पर्यंत, घास पर्यंत, जो संपूर्ण भूतों में वर्तमान है सब में, और कैसे वर्तमान है, का भिन्न भिन्न तद तद उपाधित्वाद, भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण। और फिर क्या हुआ, तो है तो वो ब्रह्म ही लेकिन अब्रह्मवद अवभासमानम। ये कहा कि हम तो जब दुनिया को, प्रपंच को, सृष्टि को देखने लगते हैं, यहाँ आप रोज रोज आत्मा और ब्रह्म की एकता सुनाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना क्या होता उठा के और जाते हैं, बैग उठा के और हम जाते हैं बाहर, तो हमें जो जो काम होते हैं वो याद आने लगते हैं और ये दृश्य प्रपंच आ जाता है। और एक एक व्यक्ति जब हमारे सामने आता है तो उसकी पूरी छवि जो हमारे मस्तिष्क में बनी हुई है, उसके पूरे जो संस्कार बने हुए हैं, वो हमें एक सेकंड भी ब्रह्म नहीं लगता, वो परमात्मा नहीं लगता, वो भगवान नहीं लगता है। और उसकी जो उपाधि उपाधि है वो उपाधियां हमारे सिर पर चढ़ जाती हैं। भाष्यकार भगवान की करुणा, उन्होंने कहा कि उपाधि त्वाद अब्रह्मवद, तुम उपाधि को मत देखो, अपनी दृष्टि को शुद्ध करो, व्यक्ति को शुद्ध करने मत जाओ। हार गए महाराज, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हार गए, तो कि हम इस व्यक्ति को सुधार कर लेंगे। तो अब्रह्मवद अवभासमानम अर्थात भेद की वहां प्रतीति होने लगती है, भेद की। और हम उपाधि को जब स्वीकार करते हैं तो उपाधि को स्वीकार करने से क्या होता है, हम ब्रह्म से अलग हो जाते हैं, दोष लगता है। श्री महाराज जी कहते हैं या तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है या आत्महत्या का दोष लगता है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसाव्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जरा। इतना बड़ा दोष लगता है, ऐसे लोकों में गमन होता है, अंधेरे लोकों में गमन होता है। जब तक बोध नहीं होता सब लोग अंधेरे ही हैं, जब तक इस ज्ञान सूर्य का उदय नहीं होता सब लोग अंधेरे ही हैं। हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये कुछ ज्ञान नहीं है, बस मूर्खता में किए जा रहे हैं। और सोचते हैं हमने बहुत बड़ा बड़े बड़े काम किए। और यहाँ इतना ही नहीं, आप किसी के साथ जाइए उसके गांव में तो कहेगा हमारे पिताजी ने ये काम किया, हमारे पितामह ने ये काम किया। अर्थात कर्म के संस्कार इतने प्रबल होते हैं तो आप परिच्छिन्न भाव को कैसे छोड़ पाएंगे, उसको छोड़ ही नहीं पाते। तो उपाधि वाला उपाधि, जब हम ब्रह्म से अपने को पृथक कर लेते हैं तो हम ब्रह्म की हत्या करते हैं, और जब अपने को ब्रह्म से पृथक कर लेते हैं तो हम आत्महत्या करते हैं। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य भी इस बात के लिए सावधान करते रहते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि अब्रह्मवत अवभासमानम संसारी, ये संसारी जीव और क्या होता है, अन्यत परस्मात ब्रह्मणा, वो परब्रह्म परमात्मा से अपने को भिन्न मानने लगता है कि मैं उससे भिन्न हूँ। एक बात, दूसरी बात इसमें यह दिखाई जा रही है कि जो आपको सुनाया बीच में कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति, हिरण्यगर्भ लोक की प्राप्ति, यह भी कहीं ना कहीं संस्कार बैठे होते हैं, किसी और लोक में जाएंगे तब हमें भगवान मिलेंगे। सभी में, मतलब केवल हिंदुओं में नहीं, सभी में। इसलिए ये जो मंत्र है आगे का दसवां, यह बहुत नितांत महत्वपूर्ण है। यदेवेह तदमूत्र, जो तत्व इस यहाँ है वही वहाँ भी है, परे भी है। यदमूत्र तदन्वय, जो परे है वही यहाँ भी है। इस प्रकार से आपके व्यवहार में भी अद्वैत को स्थापित किया जा रहा, और अगर यह नहीं देखता है तो मृत्यु से मृत्यु मापनोती उसको, यह नानेव पश्यति, जो यहाँ नाना तो देखता है। एक एक की कथा लेकर हम लोग बैठे रहते हैं, वो ऐसा है, वह ऐसा है, वह ऐसा है। श्री महाराज जी कहा करते थे बहुत बार कि इस सत्संग भवन से तुम बाहर निकलोगे और 10 मिनट बाद तुम्हारे अंदर कौन सी इच्छा का उदय होगा, कौन सा विचार आएगा, आप जानते हैं? और यदि नहीं जानते तो आपको क्या अधिकार दिया गया है कि दूसरे के ऊपर आपने छाप लगा लिया कि वह ऐसा ही है। जब अपने मन बुद्धि को हम नहीं जानते, अपनी उपाधि, क्योंकि उपाधि वो परिवर्तनशील है, उसको यूं ही जानो कि वह परिवर्तनशील है, वह नश्वर है, वह हमारा स्वरूप नहीं है। तो जब उसको हम नहीं जानते हैं कि हमारी उपाधि आगे क्या गुल खिलाएगी, तो दूसरे को क्यों हम संस्कारवान उपाधिवान मान के और उसको उसके स्वरूप से च्युत कर रहे हैं, और अब्रह्मवद अवभासमानम, हम ब्रह्म तत्व को न देखकर उसमें कार्य उपाधि, कारण उपाधि, कार्य कारण उपाधि ये सब लगाकर, और जो भूत भौतिक से परे है, माया से परे है, जो दृश्य प्रपंच से परे है, उसमें हम आरोप कर रहे हैं। तो या यह नानेव पश्यति, जो यहाँ नानात्व को देखता है वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु अर्थात परिवर्तन को वह प्राप्त करता रहता है। तो परमात्मा को कहीं और अन्यत्र नहीं समझना, यही आपके साथ आपसे बिल्कुल जुड़ा हुआ है और विभिन्न रूपों में भी वही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।